दोस्तों, SBS हिंदी की लोकल टैलेंट सीरीज में आज हम एक खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। ये हैं एक गायक और थिएटर कलाकार जो कि 4 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। संजीव, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं सारे श्रोताओं को भी नमस्कार कहना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है।
संजीव, जैसा मैंने अपने सुनने वालों को बताया कि आप लगभग 4 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो काफी कुछ तो देख नहीं पाए होंगे ऑस्ट्रेलिया का। थोड़ा बहुत बताइए कि ऑस्ट्रेलिया अब तक कैसा लगा आपको और आप भारत में कहाँ से हैं?
मैं मुंबई शहर में पला बड़ा हूँ, लेकिन हूँ कर्नाटक से। मेरे माता पिता कर्नाटक से आते हैं। सेंट्रल कर्नाटका में राणे बेलूर करके एक जगह है, वहां से आते हैं। पर मैं और मेरी दीदी, हम पूरी तरह बॉम्बे में ही पले बड़े हैं, पर घर में कन्नड़ा ही बोलते हैं, तो थोड़ा कल्चरली टच है कर्नाटका का। यहाँ पर आए हुए, जैसे आपने कहा, जी हाँ, 4 साल हुए। बट जो आपने दूसरे बात कही कि शायद ज्यादा नहीं देख पाए होंगे, वो एक तरीके से तो सच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि पूरा तो कोई देख ही नहीं पाएगा। बट हमारा कैसा रहा कि हम यहाँ एक कंपनी ट्रांसफर से आए हैं, जो इन्फोसिस जहाँ पर मैं काम करता हूँ, उन्होंने ट्रांसफर किया था मुझे US से। तो ऐसे लगा था कि शायद 1.5-2 साल रहेंगे, क्योंकि वही कहा था उन्होंने, पर देखिए अभी 4 साल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया इतना भाग गया कि हम यहीं पर है। तो सिंस हम 1.5 साल के लिए आए थे, तो दिल में ऐसा था कि जितना देख सके देख लेते हैं। तो काफी सारे बड़े शहर जो है वो एक तरीके से हम जा चुके हैं, पर जैसे आपने सही में कहा, ऑस्ट्रेलिया बहुत विशाल है, तो काफी कुछ देखने को बचा है, तो
जी
धीरे धीरे देखेंगे।
संजीव, आपका एक इंटरेस्ट जो है, खास रुचि है, वो है गायकी में। तो ये गायकी में रुचि यहाँ आके हुई कि जब अपना कल्चर लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, भूलने लगते हैं, तो गाने, भूले बिसरे गाने जो कुमुद जी कहती हैं कि लोग उनको याद करने लगते हैं, आपका क्या चक्कर रहा कि मुंबई में ही गाना शुरू कर दिया था?
जी, शुरू तो कर दिया था एक तरीके से। शायद थोड़ा मेरे फादर थोड़े कल्चरली काफी इंटरेस्टेड रहे थे, तो शायद उनसे कुछ आ गया होगा मुझे। पर जैसे आपने कहा, या जैसे कुमुद जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि बाहर, देश से बाहर निकलने के बाद शायद थोड़ा ज्यादा हो जाता है एक तरीके से अपना लगाव। कॉलेज वगैरह के दिनों में मैं काफी परफॉर्म वगैरह किया करता था स्टेज पे। दैट वाज इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम जब मैंने शुरुआत करी गाने की। मुझे ऑलमोस्ट इंडिया से बाहर हुए 12 साल हो गए हैं अभी
जी।
तो उन 12 सालों में शायद मेरा ज्यादा हुआ है, आई वुड एग्री। और एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद थोड़ा एक्टिविटी लेवल भी थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा साहस आ गया है कि हम अपने खुद से कुछ कोशिश करें। तो हम वैसे भी कुछ कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर एक तरीके का मंच हम लोगों को देना चाहते हैं, जहां वो आके अपनी गायकी कर सके।
जी।
सिर्फ गायकी ही नहीं, बट अपनी कोई भी म्यूजिकल टैलेंट हो, या तो वो शायद कविताएं लिखते हो, पढ़ते हो, किसी तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बजाते हैं तो वो, या फिर अगर वो किसी भी टाइप का टैलेंट हो सकता है जो कल्चरल एसोसिएटेड हो सकता है, मिमिक्री करते हैं काफी लोग, तो हम ऐसा एक मंच उनको प्रस्तुत करते हैं। हमारा एक कार्यक्रम है, वैसे थोड़ा कन्नड़ा सेंट्रिक है, जिसे हम हाडुबा कोगिले कहते हैं। इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है कि आप एक जैसे कोयल होती है मधुर सुर वाली,
जी।
तो आप उसका लिटरल ट्रांसलेशन है कोयल आके गाई है।
जी।
तो वो हम एक प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं, जिसमें ज्यादातर कन्नड़ा पे इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन लास्ट में जो 3-3 घंटे का हमारा कार्यक्रम होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हम ओपन छोड़ते हैं, जब वो अपने म्यूजिकल टैलेंट्स हमें दिखा सकते हैं। तो ज्यादातर लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करते हैं, या हिंदी के गाने गाते हैं, या फिर अलग अलग लैंग्वेज के गाने गाते हैं।
जी संजीव, किस तरीके के हिंदी गाने गाना पसंद करते हैं लोग यहाँ?
कैसा होता है कि दो टाइप के मैंने देखा है कि लोग सिंगिंग प्रेफर करते हैं। एक तो है जो कैरियोके पे गाना पसंद करते हैं, तो हिंदी कैरियोके जो है ये थोड़ा वाइडली अवेलेबल है, काफी सारे कैरियोके ट्रैक्स मिलते हैं, तो लोग हर टाइप के गाने गाते हैं। वो आपको क्लियरली एक तरीके से दिख जाता है कि जो थोड़े यंगस्टर्स हैं वो यंग गाने पसंद करते हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर्स हैं, वो थोड़े ओल्डन टाइप के गाने पसंद करते हैं। बट पर्सनली मैं अपनी बोलूं तो मुझे थोड़ा दोनों ही में रुचि है। वैसे किशोरदा का, किशोर कुमार जी का बड़ा फैन हूं, तो गाने ज्यादातर उनकी गाता हूं। पर कोशिश ये रहती है कि नए गाने भी ट्राई करें, तो वो दैट इज माइन। बट लोगों का अगर देखें तो आप ऐसे करियोके गाने वाले लोग भी हैं, बट एट द सेम टाइम लाइव म्यूजिक पे शास्त्रीय संगीत गाने वालों का भी जो है मिला, वो काफी काफी बड़ा है, और उसका काफी बड़ा फॉलोइंग भी है। तो हमारे यहाँ पे दो ऐसे इवेंट्स होते हैं, यहाँ मेलबर्न के साउथ ईस्टर्न सबर्ब्स में हम कार्यक्रम करते हैं, व्हीलर्स हिल जो सबर्ब है, वहाँ पर हर महीने के पहले शनिवार को रात को 8 से 11 या रात को 8 से 12 तक हमारे कार्यक्रम होते हैं। जो ऑड महीने होते हैं उसमें कैरियोके नाइट्स होती हैं, और जो इवन महीने होते हैं उनमें लाइव म्यूजिक का कार्यक्रम होता है, जैसे अभी दिसंबर 3 को लाइव म्यूजिक का कार्यक्रम होगा।
इसके साथ जो आपका लगाव है वो थिएटर के साथ भी है, और SBS हिंदी ने भक्त प्रहलाद नाम का एक आपका नाटक था जो FB लाइव किया था, फेसबुक लाइव किया था, तो क्या इंडियन कल्चर को प्रमोट करने का भी आपका कुछ रुचि लग रही है यहाँ पर?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे वो पहले प्रोडक्शन को आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से कवरेज दी थी। तो थिएटर वाला लगाव तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि शायद थोड़ा एक हिडन पैशन है जो अभी अभी धीरे धीरे रंग ले रहा है, तो डेफिनेटली मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसके साथ अलाइन हो सकूं। पर ये जो नाटक आपने देखा था, ये इंसिडेंटली ऐसा ये कल्चरल या रिलीजियस आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उसके, उन्होंने मुझसे ऐसी मांग की थी। ये श्री कृष्ण वृंदावन जो हमारे मेलबर्न में एक हाल ही में खुला हुआ, अभी तक टेंपल नहीं बना है बट टेंपल खोलने की कोशिश में हम लोगों ने एक मठ शुरू किया है, तो उनकी ये फरमाइश थी। तो उन्होंने ये फरमाइश की थी कि जो एक हमारे गुरुजी है या सेंट है राघवेंद्र स्वामी जी, जो करीबन 400 साल पहले रहे थे दुनिया में, तो उनके हम सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो जो है वो मानते हैं कि प्रहलाद जी के अंश है या फिर यानी उनके अवतार है
जी।
तो इसीलिए उन्होंने कही थी कि बच्चों को लेकर खास करके आप कोई प्ले कर सकते हैं जहाँ पे हम प्रहलाद जी के बारे में कुछ दर्शा सके। तो बस वैसे ही एक एक जैसे कहते हैं ये आर्टिस्टिक चीजें जो होती है वो एक तरीके से भगवान की प्रेरणा होती है
जी।
तो एक प्रेरणा हुई और हमने प्ले लिखी
और सफल
बच्चों को लेके डायरेक्ट कर पाए हम,
और सफल हुआ और काफी पसंद भी किया गया वहां पर, मैं जब मौजूद था देख रहा था। चलते चलते आपसे दो सवाल, पहला तो ये कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में थिएटर और सिंगिंग सीन भारतीय संस्कृति से जो संबंधित है, जिसे आप कहेंगे क्लासिकल टू कंटेम्पररी, कैसा लगता है आपको?
जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस जहां तक मैं सुनता हूं लोगों से कि ये सर्कल काफी बड़ा है, मैं अभी तक पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हुआ हूं, सो होपफुली आने वाले दिनों में मुझे और एक्सपोजर मिले, बट जितना मैं देख रहा हूं मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूं कि किस हद तक हम ऐसे एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, और एक तरीके से सिर्फ इन्वॉल्व ही नहीं पर काफी आगे भी ले जाते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है जो यहाँ पे रह के अपनी रुचि बढ़ाते हैं, अपना अपने अपने स्किल्स को यू नो होन करते रहते हैं इन एरियाज में, जो कभी हम शायद इंडिया में रह के इतना या तो नहीं करते थे या नहीं कर पाए थे
जी।
तो उस सेंस में मुझे बहुत अच्छा लगता है। थिएटर मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, बट आई होप आई हैव कम अक्रॉस अ फ्यू गुड थिएटर ग्रुप्स, बट आई होप कि वो और बढ़े, क्योंकि थिएटर एक ऐसा फॉर्म ऑफ आर्ट है जो आपको हर तरीके से तैयार करता है, आपकी एक पर्सनालिटी को वो डेवलप करता है
जी।
तो मैं आशा करता हूं कि ये और बढ़े ये प्लेटफॉर्म
जी। संजीव चलते चलते सवाल नहीं है, एक फरमाइश है कि चलते चलते आपकी आवाज में एक गीत हो जाए।
चलिए आप फरमाइश कर रहे हैं तो और जिस तरीके से आपने सवाल पूछा उसके लायक ही एक गाना का पेश करता हूँ, जो किशोर दा का ही गाना है, चलते चलते। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
संजीव SBS हिंदी में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर से एक बार आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।